الشیطان الرجیم. چلیے جی کنٹینیو کرتے ہیں سبق کو. انشاءاللہ اگلے نبی کی کہانی پڑھیں گے. اب آگے سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر اس طرح نہیں ہے جیسے کہ باقی نبیوں کا ہے. باقی انبیاء کرام کی قوموں پہ عذاب کی بات تھی, وہ انبیاء رسل تھی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ کسی عذاب کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. اگر تین رسول جن کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے, حضرت نوح, حضرت ہود اور حضرت صالح, اس کے بعد اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر بس قصص النبیین کے طور پہ, یعنی سٹوری آف دی پروفٹ ہے. اب اس کے بعد پھر تین رسولوں کا تذکرہ آئے گا جو آپ کی نسل میں سے تھے, اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے بھی تھے اور آپ کے ہم اثر بھی تھے, یعنی اسی دور کے نبی تھے, ان کا ذکر یہاں انبیاء اور رسل میں آئے گا. اور فرق آپ کو یاد ہے نا انبیاء اور رسل کا اور قصص النبیین کا. انبیاء اور رسل میں قوموں پہ عذاب کی باتیں ہوتی ہیں, اور قصص النبیین میں نبیوں کی سیرت ہوتی ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آپ کہہ لیجئے ایز اے سائڈ پوائنٹ آ گیا. اصل فیصلہ قوم لوط پر عذاب کا تھا. براہ راست حضرت لوط کے پاس جانے کی بجائے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے, وہاں ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ آگے حضرت لوط کے پاس جائیں گے. اگر آپ کو سورۃ الاعراف کی ترتیب یاد ہو, ادھر بھی چھ رسولوں کا تذکرہ انبیاء اور رسل کے انداز میں ہوا تھا, لیکن وہاں بیچ میں حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں تھا. اور اگر پیچھے تھوڑا اور چلے سورۃ الانام, جس کو سورۃ الاعراف کی جڑواں سورت آپ کہیں گے, تو وہاں بھی حضرت ابراہیم کا قصہ قصص الانبیین کے طور پہ تھا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کے قصے پڑھتے وقت بھی کان کھلے رکھنے چاہیے اور اس سے نصیحت لینی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں آیت 69 سے. وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے بشارت لے کر. رسول کا لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ تھے, فرشتے تھے, اور بعض روایت میں تین فرشتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا تذکرہ ہے. یہ جو جاءت ہے یہ بھی مؤنث ہے, فرشتوں کے لیے مؤنث کا لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس وقت یہ فرشتے آئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے, اور بیوی سارہ جو ان کی بیوی تھی وہ 80 سال کی تھی. اولاد کی نعمت سے بیوی سارہ تو محروم تھی, لیکن حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سے ایک اولاد یعنی حضرت اسماعیل موجود تھے. فرشتے آئے بالبشرا, خوشخبری کے ساتھ. یہاں بشرا سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی خوشخبری ہے. قالو سلامہ, فرشتوں نے آ کر سلام کہا. یہاں سے فرشتوں کا سلام دیکھیے, وقت ملاقات پر ہائے بائے کی بجائے سلام کہنا جس طرح اسلام کا ریچول ہے, اسی طرح نیک لوگوں کا یہی کلام ہوتا ہے. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ اور کچھ اس قسم کے لفظ آج ہم نے بنا لیے یا دوسروں سے لے لیے, لیکن اسلام کا لفظ کیا تھا؟ سلام. اور یہی فرشتے جنت میں بھی سلامتیاں بھیجتے ہوئے دکھتے ہیں ہمیں اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. قال السلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا. بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے آگے کہا سلام, انہوں نے بھی آگے کہا جواب میں کہا سلام, یہ مراد نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نساء میں, وَإِذَا خُشِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا بہت اچھا سلام کا جواب دو اور اس سے بہتر پلٹا دو. تو یہاں سلام سے مراد کیا ہے کہ قوموں پر عذاب کا فیصلہ لے کر فرشتے آتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر ہی بتا دیا سلامن, یعنی آپ ہمارے ہم سے سلامت ہیں, ہم آپ کے پاس کوئی عذاب کی بات نہیں لے کر آئے, हाँ, जिन कौमों पर अजाब के लिए फरिश्ते जाते थे वहां जाके सलाम नहीं कहते थे, तो गोया के क्या बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने जब सलाम कहा तो जवाब पे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा, और उसके बाद बगैर कुछ पूछे फमान लबिसन जा बिजलिन हनीज, इब्राहिम ने भी जवाब में सलाम कहा, फिर कुछ भी देर ना गुजरी कि आप ले आए एक बछड़ा बुना हुआ। यहां से आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी दिखेगी। बछड़ा बुना हुआ, इजिल कहते हैं बछड़े को, बिछड़ा नहीं बछड़ा। कहाँ पड़ा? उश्तिबू फी कुलूबिहिमुल इजिल, ठीक है, बछड़ा, गाय का बच्चा जो होता है। इजलिन समीन का लफ्ज जो है वो सूरह ज़ारियात में आएगा, मोटा बछड़ा था। यहाँ लफ्ज आया हनीज, हनीज कहते हैं हा नून जाल से, बारबेक्यू के मानों में, वो गोश्त जिसको आग पे पकाया जाए, गोश्त की चर्बी टपकाता हुआ गोश्त। पहले दौर में लोग इसी तरह करते थे, सहराओं में जाते, घड़े के अंदर गोश्त को पत्थर पर भूनते थे, फिर हर किस्म के गोश्त के लिए यही इस्तेमाल होने लगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन ही उनकी खातिर करने की सोच ली, लेकिन हुआ क्या? फलम राइदियहुम ला तसिलु इलै, फिर जब आपने देखा कि उनके हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, किसकी तरफ? खाने की तरफ। नकिरहुम, तो जरा अजनबियत महसूस की। नकीरा वही है जिससे लफ्ज मुनकर है, इनकार करना, स्ट्रेंज फील किया, क्योंकि अरबों की आदत थी कि जब मेहमान कुछ ना खाए तो दो में से एक बात होती है, या तो दुश्मनी की नीयत से आया या कोई बुरी खबर लेकर आया, तो दोनों तरह के अंदेशे थे। लिहाजा वह औजस मिनहुम खीफा, तो उनकी तरफ से खौफ महसूस किया। यहाँ देखिए लफ्ज औजस आया, वो जीम सीन इसका रूट है, वज्स छुपने को कहते हैं, खास तौर पर डर को छुपाना। मुराद क्या है कि दिल ही दिल में डरे और इसको छुपाने की कोशिश करने लगे। अरबी जुबान में डर के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं, मसलन आप देखिए कि पीछे हम पढ़ते हैं खौफ, खाफा, खाफ कहते हैं आने वाले खतरे का अंदेशा, फ्यूचर का खौफ, जिसको अंदेशा कहेंगे आप। इसी तरह लफ्ज खशी आता है, खशियत, जिससे खशियत होता है किसी अमर की अजमत की वजह से डरना, यानी अल्लाह की अजमत से डरना, उसकी यानी बड़ाई के एहसास के साथ बंदे को खौफ आए। इसी तरह एक लफ्ज होता है खशा, आइन से, खाशीन आइन, खशा कहते हैं ऐसा डर कि उसका असर आज़ा और जवारेह पर भी पड़े, जिसको आप हम्बल होने के और ह्यूमिलिएशन की सूरत में कहें। इसी तरह एक लफ्ज होता है तकवा, तकवा इत्तका, इंजाम के खौफ की वजह से गुनाहों से बचना। इसी तरह हजीरा एक लफ्ज़ है, ये सब कुरान में आगे भी आएंगे, किसी खतरे की चीज से बचना, डरना, और उर्दू में आप कहते हैं चुकन्ना होना। इसी तरह एक लफ्ज आता है वजफा, डर से दिल धड़कने लगना, इज़तिराब के मानों में। इसी तरह राहब, जिससे लफ्ज राहिब है, ऐसा डर जिसमें एहतियात भी हो, इज़तिराब भी हो, और वो तवील हो, ज्यादा अरसे तक आप रहे। है कोई दुनिया की जुबान जिसमें डर के लिए इतने लफ्ज हो? इस तरह एक और लफ्ज है अशफका, शीन फाक आपसे, किसी की खैर ख्वाही के साथ इस पर तकलीफ आने से डरना, इसी से शफकत है ना, माँ की या बाप की। डर और रहम के मिले जुले जज्बों के लिए ये लफ्ज आता है। इसी तरह रा, रौ का लफ्ज है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ताज्जुब करना और किसी खतरे का वहम महसूस होना, यानी मौहूम खतरे से डरना। इसी तरह रोग भी एक डर होता है, रायब, शिद्दत खौफ, दहशत। अल्लाह अकबर, हम तो इतने लफ्ज जमा भी नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कुरान पाक में जहां जिस लफ्ज की जरूरत थी वही आया, यानी यहां आप देखिए कि जैसा आया, खाशा नहीं आया, खशा नहीं आया, रहबा नहीं आया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस डर को छुपाना चाह रहे थे लेकिन छुपा नहीं पा रहे थे, ये मुराद है। खौफ आया कि मेहमान क्यों इस तरह कर रहे हैं, लिहाजा कहा भी खाओ नहीं खा रहे तो वजह क्या होगी? कालू ला तखफिन्ना उरसिलना इला कौमिन लूत, उन्होंने कहा आप डरिए नहीं, असल में तो हम भेजे गए हैं कौमे लूत की तरफ। फरिश्तों को समझ आ गई। यहां तक आप देखिए, पहली बात यह कि इब्राहिम को नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं, यहाँ से एक बात पता चलती है कि नबियों को गैब मालूम नहीं होता जब तक अल्लाह ताला उनको ना बताए। दूसरी बात, यहाँ तक जो हमने देखी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी है। मेहमानों के आने के बाद उनसे सलाम दुआ करने, उनको बिठाने के बाद गए और बछड़ा भून के ले आए। बीवी भी अंदर थी, उसको नहीं कहा कि खाना लाओ। यहाँ से एक इस्लाम का मिजाज समझ आता है, और वो क्या है कि मेहमान नवाजी कैसे करनी चाहिए। आप देखिए कि पहली बात तो यह है कि बाज़ लोग सलाम भी इतना रुखा भीखा करते हैं, सलाम कोई स्माइल नहीं, कोई कुछ नहीं, आने वाला इससे परेशान होता है। किसी को आता देकर आप अगर खुश नहीं होते तो आप सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरेगा। फिर दूसरी बात आप देखिए कि इब्राहिम एक मर्द है, खुद हद था जो मुमकिन था उसको कर दिया। यहाँ आपको लग रहा है कि उन्होंने बछड़ा भूना और किया, हालांकि अरबों का कल्चर क्या था कि जानवर घरों में होते थे। उस दौर में ना बेकरियां थी और ना स्वीट्स थी और ना कोई पकौड़े समोसों की दुकानें थी। मेहमान की मेहमान नवाजी कैसे करनी चाहिए, चंद बातें नोट कीजिए, क्योंकि आज हमारे कल्चर में इसमें बहुत सारी कमी बेशी हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि किसी को भी खाना खिलाएं तो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाएं। इस वजह से ना किसी की खातिर करें कि मेहमान क्या कहेंगे, ना रखा तो जाके बातें करेंगे, ये नहीं कहिएगा। दूसरी बात यह है कि मेहमान को पूछना नहीं चाहिए क्या पियेंगे और वो जवाब दे ना दे बैठे रहो। कई लोग जो होते हैं वो क्या पियेंगे, ठंडा पियेंगे कि गर्म पियेंगे, आपको भी तो समझ है ना, गर्मी में आया तो ठंडा, सर्दी में आया तो गर्म। और वैसे आते पानी जरूर पूछना चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो, बाज दफा इंसान बाहर से आता है तो उसको प्यास लगी होती है, दिल चाहेगा तो कोई ले लेगा, नहीं लेगा तो वापस कर देगा। ये मायूब बात है मेहमान के लिए कि उससे पूछना, बाज दफा रस्मन बाज दफा मुरव्वतन इंसान पीछे कह देता है कि नहीं करना, बाद में मुश्किल लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज क्या है कि जो चीज आसानी से मुहैया हो वो रख देनी चाहिए घर में, जो कुछ हो रख दे। बस दफा हमारे यहाँ एक अजीब खराबी क्या हो गई कि मेहमान आया उसको देख के एकदम रंग उड़ता है, फिर उसको बिठा के गायब, आधे घंटे बाद आएंगे साथ एक ट्रॉली सजी हुई और साथ उस पे पकौड़े समोसे, तो क्या वो खाने आए थे? हो सकता है अगला कोई बड़ी अहम बात करने आया हो, नहीं नहीं मैं भी आती हूँ, फिर अब अगला ना आपको किचन में आके तंग कर सकता है ना कुछ है, तो ये रस्मी तकल्लुब है। घर में है तो रख दे, पहले से बताया हुआ था पता था कुछ है तो रख दे, लेकिन इस सोच में मेहमान को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कि अब हम आपके लिए अरेंज करें। बस लोग फिर सासा कहते ही रहते हैं, सुबह से लगी हुई हूँ, थक गई हूँ, साथ दावत पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, साथ बैठ के बातें करते रहते हैं, सुबह से बहुत थक गई हूँ, तो मेहमान शर्मिंदा होता है। ठीक है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। फिर अगली बात ये कि दस्तरखान खुला होना चाहिए, ये नहीं कि गिन गिन के आप बिस्किट रखें, तीन लोग हैं तो चार बिस्किट रख दें, ये मायूब बात है। अल्लाह के नबी की इस पे बहुत बातें, और इस पे हमारा एक पूरा सेशन भी है मेहमान नवाजी के आदाब, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि मेहमान के सामने रख के ये नहीं कहना चाहिए, बस रख नहीं देना चाहिए, कहना भी चाहिए। फिर उसके बाद जाहरी तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं जमा करनी चाहिए कि जिससे रोक पड़े। बस अब होता कह के लोग भी फिर जाके देखते क्या भेज रखा था, कहते वो बिस्किट रख दिए थे, वो फुला बेकरी की चीजें थी। ये भी एक मसले हो गए ना हमारे यहाँ, देखिए लंबे टेबल लगते हैं। इखलास ऐसा ना करें, जो है रख दें, नहीं है जो हैसियत है, घर में अच्छी चीज है तो मेहमान के लिए रख दें, ये नहीं कि वो छुपा दें, बेटा छुपा दो मेहमान आ गए बाद में खोलेंगे। बाद जब बच्चे बहुत कंजूस होते हैं, हो सकता है उन्होंने अल्लाह के हुक्म से आज कोई बर्गर या पिज्जा ही मंगाया हो, ऊपर से मेहमान आ गए, कहते हैं इसको छुपा दो इनके जाने के बाद खाएंगे, और वो खुशबू छुपती कोई भी नहीं, मेहमान को पता लग जाता है ना, और बच्चे भी आके कान में थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रहे होते हैं अम्मी हम पिज्जा कब खाएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये मायूब बातें हैं, दिल खोल के खिलाएं। आप देखिए कि ये इतनी बड़ी नेकी होती है कि आप दूसरे को खिलाएंगे, अल्लाह सुब्हान तआला खुद ब खुद आपको, आपका पेट भी उसी से भर देगा। फिर इसी तरह देखिए कि मर्द खुद भी खातिर कर सकता है, बेगम को मजबूर नहीं कर सकता कि बेगम आप लाएं। अभी देखेंगे बेगम घर में थी लेकिन हजरत इब्राहिम खुद जा रहे हैं। हमारे यहाँ बाज़ वक़्त मर्दों का इस तरह के काम करना, इसको मायूब समझते हैं, हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है। तो बहरहाल ये कि अच्छी शान है, खिलाना चाहिए, तंग तंग दिली के साथ और तंग नजरी के साथ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी से एक दफा एक सहाबिया ने पूछा कि हम कभी कहीं जाते हैं हमें भूख लगी होती है लेकिन हम तकल्लुफन कोई कह देते नहीं भूख नहीं है, तो क्या ये भी झूठ है? तो आपने कहा कि भूख और झूठ को जमा ना करो, यानी ये झूठ है। लगी है भूख तो कह दें लगी है। अगर आपको भूख लग, पहले रास्ते में प्लान बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या रखेगा आगे कोई, और जब वो ले आए तो कहते क्या जरूरत थी, कोई अच्छा तो उठा के ले जाए, कहता है ठीक है जरूरत नहीं थी तो मैं ले जाता हूँ। तो ये झूठी मूठी बातें करके लोगों को खुश नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की, और मेहमान जब आ गए और खाना नहीं खा रहे तो परेशान हो गए। इससे क्या पता चलता है कि चीजें सिर्फ रखने की नहीं होती, खाने की भी होंगी। बहरहाल अब आगे क्या हुआ, अगली अगला हिस्सा थोड़ा सा पलटता है। आयत 71, वमरातुहु काइमतुन फदहिकत, और आपकी बीवी कहीं करीब खड़ी थी तो वो हंस पड़ी। ये कौन थी, हजरत सारा थी, पर्दे के पीछे खड़ी थी। और अक्सर औरतें पर्दे के पीछे छुप के देख ही रही होती हैं कि मियाँ के कौन से दोस्त आए हैं, अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या लेन देन हो रहे हैं। हंसी निकल गई, बातें सुन रही थी। किस बात पे हंसी होंगी, शायद इस बात पे कि फरिश्तों के खाना ना खाने पे शौहर खौफजदा है, या हो सकता है वो बुशरा पे खुशखबरी पे थी कि बच्चे की खुशखबरी कैसे मिल गई। तो हुआ क्या, फबशरनाह बिइसहाक, तो हमने इसे बिशारत दी इसहाक की। व मिन वराए इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की भी, यानी बेटे की भी उसके बाद पोते की। अब हम नोट कीजिएगा, फबशर ना हा, अगर अरबी में देखें तो हा मुअन्नस है, यानी सिर्फ बीबी सारा को खुशखबरी मिली है। ये नहीं कहा फबशर ना हुमा, क्यों, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहले बेटा था हजरत इस्माइल, लेकिन बीबी सारा का बच्चा नहीं था पहले से। 100 साल के, 80 साल की हैं, और खड़ी थी, और वहां उनको जब ये बात पता चली तो इससे वो बहुत ही हैरान हुई। यहां से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता दिया है। हजरत इब्राहिम कौन थे, अल्लाह के दीन के लिए घर से बेघर हुए, इस तरह से हिजरतें करते करते अल्लाह के घर को आबाद करते हुए दिखते हैं। अल्लाह का पैगाम पे देने में पहले अपने माँ बाप को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, और बिल आखिर शादी की, उसमें भी बच्चा नहीं है, फिर होते हुए बुढ़ापे में औलाद मिली, अजनबी मुल्क में है, कोई ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह उनको इनके अच्छे अमल का बदला क्या देता है कि भांज बीवी के पेट से बुढ़ापे में इसहाक की खबर दे दी। फिर उसके बाद ना सिर्फ इसहाक बल्कि याकूब पोते की, और उनकी नस्ल चलती हुई दिखी। ये बताया जा रहा है कि जब अल्लाह के तवक्कुल पे बंदा कोई काम शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसको किस तरह से वो चीजें भी देता है जो आम हालात में नहीं होता। आज के दौर के डॉक्टर होते तो कहते नहीं ये बच्चा नहीं हो सकता, इसकी उम्र मीनोपॉज से बहुत ऊपर चली गई है, एबॉर्ट करवा दो। नहीं, अल्लाह अनयूजुअल लोगों के साथ अनयूजुअल बातें करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां चूंकि दूसरों के लिए, दूसरों से मुख्तलिफ थी, अल्लाह सुबहाना तआला ने इनके साथ भी वही बात की जो कि दूसरों के साथ नहीं की जाती। बहरहाल बेटे की खुशखबरी मिल गई, ये सब कुछ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अब यहां से उठ के उनको जाना था हजरत लूत के पास, जो उनके भांजे भी थे। तो वहां जाकर अल्लाह ताला के उस नबी को उसकी कौम की तबाही की बात देनी थी। तो ये बीच में एक, जिसको आप कहना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता तो चल ही जाना था कि हजरत लूत की कौम पे अजाब आ रहा है, तो उस दुख को बुझाने के लिए, कम होने के लिए इनके अपने घर में बच्चे की खुशखबरियां दी जा रही हैं कि बच्चा पैदा होगा। और यहाँ से एक और बात पता चलती है कि एक ही वक्त में फरिश्ते खुशी और गम की खबरें साथ लेकर आए हैं। जिस घर में खुशी हो वो इतना ना खुश हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि इसी मौके पर कोई गम भी आ जाए, और इसी तरह जहां गम हो वहां फरिश्ते खुशखबरियों की बात भी ला सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी मिली, बीवी का जरा रद्देमल देखिए और इब्राहिम का क्या था, इसको देखते हैं बाद में। आयत 72, कालत या वैलता, वो औरत कहने लगी हाय मेरी शामत, आ अलीदू, क्या मैं जनूंगी। अब ये देखिए आ क्या है, सवाल, क्वेश्चन, अलीदू यूलिदू वलदा, हम नाम पढ़ते हैं, मैं जनूंगी, यानी ये उनका एक रिफ्लेक्स एक्शन था, रिस्पॉन्स था। वाना अजूजुन, और मैं बुढ़िया हूँ, अजूज का लफ्ज़ है अजाजा से, आजिज होने वाली बुढ़िया, यानी एक औरत जो पहले भी बच्चा नहीं उससे पैदा हो सका और अब तो वो बूढ़ी भी हो रही है, ऐसी औरत जो खुद भी बूढ़ी, वहाज वाली शेखा, और मेरा ये शौहर बूढ़ा है, इन हाजल शई अजीब, और ये तो बड़ी अजीब बात है। ये था एक औरत का फौरी रिएक्शन। जब इंसान को ऐसी खबर सुनता है कि जो हकीकत में इंसान के लिए बहुत ही खुशी की होती है ना, तो उसके ऊपर परेशान हो जाता है। मर्दों को भी ऐसी बातों पर हैरत होती है, लेकिन औरतें जज्बाती बहुत होती हैं, आगे तक सोच लेती हैं। बात जब आप देखिए कि मर्द कूल काम रहते हैं, लेकिन औरतें बहुत ज्यादा सोचती हैं। तो यहाँ उनका ये अमल देखिए कि वो कहती हैं कि हाय मेरे घर कैसे बच्चा होगा। कालू अता जबीन मिन अमरिल्ला, आयत 73। फरिश्तों ने कहा क्या आप अल्लाह ताला के फैसले पे ताज्जुब करती हैं? नहीं, अल्लाह का फैसला है, वो आपको खुशखबरियां दिलवा रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो तुम पर है नबी के घर वालों। फरिश्ते तसल्लियां दे रहे हैं कि अल्लाह की रहमत पे तुम क्यों हैरत करती हो। ताजबीन फेले मुजारे सीगा वाहिद मुअन्नस है। अगर आप देखें कि किस तरह से बीवी को अहले बैत में यहाँ रखा, ये बड़ा अहम नुक्ता है कुरान का, कि एक बहुत बड़ी बहस है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अहले बैत में से थी कि नहीं, तो ये उसकी दलील है। यहाँ सिर्फ हजरत इब्राहिम है और उनकी बीवी है, दैट्स इट। लेकिन यह अहले बैत कहकर उनकी बीवी बीवी सारा को मुखातिब किया जा रहा है, तो बीवी भी जो होती है वह अहले बैत में से होती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो फातिमा अली और हसन और हुसैन के बारे में कि अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। तो बहरहाल यहाँ से बीवी की अहमियत भी समझ आती है। इन्नहु हमीदु मजीद, यकीनन अल्लाह ताला हम्द के लायक भी और बुजुर्गी वाला भी है। अब ये सारी बातों को देखें तो इसमें चंद बातें हमारे लिए गौर और फिक्र के मुतल्लिक है, और वो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का काम कर रहे थे, अल्लाह ने अभी तक औलाद की नेमत से उनको थोड़ा दूर रखा था, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन का काम करना नहीं छोड़ा, मकसद से नहीं हटे। हम अमूमन ऐसी खुशखबरियों पर फराइज भी भूल जाते हैं। ये थी वो वजह जिसके लिए इब्राहिम को अल्लाह ताला बार बार हनीफ कहते हैं, उम्मत वाहद थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पढ़कर गैर मामूली शख्स कौन हो सकता है, लेकिन मेहमान की खातर कितने सुकून से करते हुए दिखते हैं। हम सोचते हैं कि दीन का काम करने वालों को हर वक्त इमरजेंसी नाफिज किए रखनी चाहिए अपने इर्द गिर्द, क्योंकि हम काम बहुत कर रहे हैं। बहुत ही नामुनासिब रवैया होता है इंसान का, हर वक्त हौलते रहना। और आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी खुशखबरियां सुन ली तो साथ ही उनके दिल में एक और सवाल उभरा कि भाई ये बच्चा, ये फरिश्ते हमारे पास तो आए हैं, कुछ और भी काम है? तो फरिश्तों ने उनको बता दिया कि हाँ भाई, हम तो हजरत लूत के पास जा रहे हैं और उस कौम पे अजाब आएगा। इस बात को सुनकर इब्राहिम का क्या रिस्पॉन्स था, आयत 74 देखेंगे। फलम्मा ज़हबा इब्राहिम अर्रौउ, और जब चला गया इब्राहिम का खौफ। कौन सा खौफ बताया था? रौ। इसी एक आयत में देखे खौफ के कितने लफ्ज हैं, ताज्जुब करना और मोहूम खतरे से डरना। अब यहाँ लफ्ज यही आना चाहिए था ना, यानी इब्राहिम को वहम आने लग गए कि कैसे ये बच्चा हो, कैसे उस कौम पे अजाब आएगा, क्या हालात होगा, दिस एंड दैट। वजातुल बुशरा, और आ गई उसके पास बिशारत भी, खुशखबरी भी आ गई। युजातिलुना फी कौमी लूत, तो हमसे झगड़ा शुरू कर दिया उसने कौमे लूत के बारे में। यानी इब्राहिम ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जज्बे दिल में रखते हुए हमसे इस बारे में बहस करने लग गए कि कौमे लूत पर अजाब क्यों आएगा। तौरात में ये झगड़ा बड़ी तफसील से तलब है, बड़ी तफसील से मौजूद है। खुलासा के कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि देखो, अगर इन बस्तियों में 50 आदमी भी अच्छे हुए, क्या फिर भी इनको हलाक कर दिया जाएगा? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, इनको फिर हलाक नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहिम ने कहा अच्छा, अगर 40 लोग अच्छे हुए फिर हलाक करोगे? कहा फिर भी नहीं। होते होते कहते हैं कि 5 आदमियों पे बात आ गई कि अच्छा, अगर 5 लोग अच्छे हुए तो भी अजाब होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ये ना कहें। फरिश्तों ने कहा कि आप इस बहस को छोड़ दें, क्योंकि आपके रब का फैसला हो गया है कि हजरत लूत पर इनकी 2 बेटियों के सिवा कोई एक मर्द भी ईमान नहीं लाया। पूरी बस्ती जो थी वो तबाहो बर्बाद हो चुकी थी। और इब्राहिम का ये झगड़ा क्यों था? आयत 75, इन्ना इब्राहिम लहलीम अव्वाहुम मुनीब। यकीनन इब्राहिम बहुत भी बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की जनाब में रुजू करने वाले थे। 3 सिफात इकट्ठी जमा कर दी इब्राहिम की, कदर अफजाई की जा रही है कि झगड़ा क्यों कर रहे थे, क्योंकि दूसरों से मोहब्बत करते थे, हलीमुत्तबा थे, दिल के नरम थे, आखिरी हद तक कोशिश की लोगों को समझाने की, ना माने तो फिर ये साहब आया। इसके बावजूद उनकी तड़प थी, तलब थी कि कौम पे साहब ना आए। और आप देखें तो यही कैफियत नबी सल्लम की भी थी, और यही नरमी अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को भी दी थी कि गुनाहगारों को मारना नहीं, पकड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ अच्छा मामला करना है। ये वो सिफात हैं जो जो लोगों के दिलों में दीन वाले की जगह बनाती हैं। अगर आपको भी अल्लाह कुरान दे रहा है तो आप भी अपने अंदर दिन ब दिन नरमी लाएंगे तो आप ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और अगर जुबानें भी सख्त और कठोर लहजे और चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, तो याद रखेंगे कि लोग फिर हमसे कटने लगेंगे, भागने लगेंगे। इसी तरह रौ के जो लफ्ज़ में एक और तुफमानी भी आता है, वो भी नोट कर लीजिए, दिल की ऐसी कैफियत जो इंसान को ताज्जुब में भी डाले और खौफ भी हो। इसको उर्दू में कहते हैं खैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत। और यहाँ झगड़े से मुराद फाइटिंग नहीं है, बल्कि दलाइल के साथ बहस करना है कि क्यों कौम लूत पर अजाब आ रहा है, अभी तो लूत वहाँ मौजूद हैं। और मुनीब का लफ्ज आया ना नौब से, हर तरफ से कटकर एक तरफ जुड़ने वाला। क्या खूबियाँ इब्राहिम की, कहीं हनीफ है तो कहीं मुनीब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी तड़प थी कौम लूत के लिए, कबूल नहीं हुई क्योंकि कौम मुजरिम थी। पीछे भी तो यही हुआ, हजरत इब्न नूह की तो अपने बेटे के हक में कबूल नहीं हुई। इसीलिए यहाँ अल्लाह इब्राहिम को खिताब करते हैं 76 में, या इब्राहिम, फरिश्ते के जरिए किया होगा उस वक्त, या इब्राहिम आरिदन हाजा, छोड़ दीजिए आप इस मामले को, इग्नोर इट, इन्नहु कद जाअ अमरु रब्बिक, अब तो आपके रब का फैसला आ चुका है। وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ, ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا ابراہیم کے ساتھ اللہ کا معاملہ۔ اتنی تڑپ ہے کہ لوگ کو بے عذاب نہ آئے نہ آئے لیکن نہیں بچے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت یونس کی قوم پہ عذاب آیا تو ٹل گیا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تڑپ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے پھر بھی نہیں ٹلا، हजरत नूह चाहते हैं बेटे पे अजाब ना आए फिर भी नहीं टला। इसकी वजह की जान मालूम है आपको क्या? कौम यूनुस खुद तड़पी थी, यहां दूसरे तड़प रहे हैं। ये जुमला नोट करें, दूसरों की तड़प मुझे फायदा नहीं देगी अगर मैं नहीं तड़पूंगी तो, ये वजह। तड़प होनी चाहिए दूसरों के लिए, लेकिन इंसान दोस्त तो होना है लेकिन इंसान परस्त नहीं होना कि फिर वो गलत भी करें तो फिर भी उनका साथ ना छोड़े। कहा इसको छोड़ दीजिए, इस मामले को पीछे कर दें। वलम्मा जात रुसुलना लूतन सी अबिहिम वदाक बिहिम जरआ, आयत 77। और जब आए हमारे पास लूत के पास, और जब आए हमारे भेजे हुए लूत के पास, तो आप इनकी वजह से बड़े गमगीन हो गए और आपका दिल तंग हुआ। क्या मेहमानों के आने पर दिल तंग हो गया? नहीं, दाक अभी ही में ना जयक से तंगी होना, घुटन जिसको आप कहें उर्दू में, जरअन कहते हैं दिल को, दिल में तंग हो गए। किस बात से परेशान हो गए थे? क्योंकि फरिश्ते खूबसूरत लड़कों के रूप में आए थे और हजरत लूत को अपनी कौम की हालत पता थी कि वो लड़कों के साथ बदफेली करते हैं, तो उनको डर क्या था कि कहीं मेरे मेहमान उन लोगों के लिए फितना ना बन जाए। इसीलिए दिल में घबराए, वकाल हाजा यौम नसीब, और कहने लगे आज का दिन तो बड़ी सख्ती का दिन है। असीब का लफ्ज है ना आयन स्वाद बासे असबुन, सख्ती को कहते हैं एक चीज को दूसरी से बांधना। इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज कभी हमने उर्दू में बोला? असाब, मेरे तो असाब खिंच गए, पट्टे मसल्स कहते हैं इंग्लिश में, वो भी लफ्ज इसी से। असाब क्या होते हैं? हड्डियों को जिस्म के साथ बांधे होते हैं। अगर ये डोरी हैं, ये जो मसल्स हैं ना, ये हमारे जिस्म के गोश्त और हड्डियों को यूं बांधे होते हैं। जब हम कहते हैं मेरा मसल पुल हो गया, मसल खिंच गया, गर्दन का मसल, ये असल में रस्सी की तरह की एक चीज होती है। इसी लफ्ज से फिर लफ्ज तासुब भी है, वो भी प्रचलित होते हैं। असबा लफ्ज भी इसी से ही है, दतियाली रिश्तेदारों को कहते हैं। तासुब क्या होता है? अपने नजरिए और अकीदे पर इतनी सख्ती करना कि दूसरे को ठीक जानकर भी उसको ना मानना। ये मसला चूंकि मेरे ग्रोह से नहीं, मेरी जमात से नहीं है, तो वही चीज इधर अल्लाह ने रख दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उस दिन के बारे में कहा, ये बड़ा सख्त दिन है, बहुत मुश्किल होगी, ये तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। खैर, हजरत लूत ने उनको एक अल्टरनेट देना चाहा, कब? आयत 78, वजाहु कौमुहु युहराउन इलैही, और आए आपकी कौम के लोग दीवानावार दौड़ते हुए आपकी तरफ। ये जो लफ्ज है ना, युहराउन, युहरहारा आइन से, तेजी से दौड़ना, और ये मजहूल है, पैसिव वॉइस, ये बड़ी एक उनकी कैफियत है। खुद नहीं दौड़ रहे थे, कोई और इनको दौड़ा रहा था, असल में इनके ये जज्बाती होने की कैफियत को पेश किया जा रहा है। खूबसूरत लड़कों की आमद की खबर सुन के नफ्स के हाथों बेकाबू हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ये मतलब है। वमिन कब्लु कानू यअमलून सय्यिआत, और पहले से वो बुरे कामों में मुलव्वस तो थे ही। काल या कौमी, लूत ने कहा है मेरी कौम, हाउलाई बनाती, ये है मेरी बेटियां, यानी औरतें मुराद हैं, हुन्ना थारु लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, यानी तुम मर्दों के पास क्यों जाते हो शहवत से, औरतों के साथ निकाह करो, और अगर बेटियों को असली बेटियों के मानों में भी लिया जाए तो मतलब क्या है कि आप इनके साथ निकाह करो और फितरत के रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, बस अल्लाह से डर जाओ। वला तुखजूनी फी दईफी, और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा ना करो, कोई नहीं सुनता। तो काले सब मिनकुम रजुलुर रशीद, तो क्या तुम में कोई एक भी नेक चलन आदमी नहीं है, किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है? यहां से आप देखिए क्या ऐसी दिखती है, एक कौम का सरबराह है, नबी है, और वो लोगों को समझाना चाह रहा है, लेकिन लोग समझ के नहीं आते। यहां से आप देखिए कि जो गुनाह का नशा होता है, खास तौर पे ये गुनाह, होमोसेक्सुअलिटी, माँ बहन भाई बेटे सबकी फर्क मिट जाती है, तजीम, जिसको कहना चाहिए कि रिश्तों की तमीज खत्म होती है। तो हजरत लूत को ये गम था कि मेरे मेहमानों के साथ ये मामला क्या होगा। कौम की ढिटाई देखिए, और याद रखिए गलत काम करने वालों की जुबान ऐसे ही खुलती है। आयत 79, कालू, वो बोले, कौन? कौम के सर भिरे हुए लोग, लकद अलिम तमालना फी बनाती कमिन हकिन, उन्होंने कहा तुम्हें ये तो पता ही है कि तुम्हारी इन बेटियों में तो हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इन पर तो हमारा कोई हक ही नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, यानी हमें इन औरतों में कोई कशिश नहीं। वा इन्नक लतअलमु मा नुरीद, और तुम खूब जानते हो हम क्या चाहते हैं। इससे भी ज्यादा कोई ढिटाई की बात हो सकती है क्या? आप इधर उधर की बातें ना कीजिए, आपको साफ पता है हमें क्या चाहिए, ये गुनाह का नशा बोल रहा है। अब हजरत लूत की बेबसी, आयत 80, काल लव अन्न ली वतन, लूत ने कहा काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले औ आवीला रुकनिन शदीद, या कोई मजबूत सहारा होता जिसकी पनाह में ले आता, क्या आज मेरी तुम पर बस नहीं, कोई गैरतमंद नहीं तुम्हें, किसी को होश नहीं, किसी में इंसानियत नहीं, क्या हो गया तुम्हें, इतने सख्त हो, कोई मेरा सहारा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पे फरमाया कि यरहमुल्लाहु लूतन, अल्लाह ताला रहम फरमाए लूत पर, लकद कान या वीला रुकनिन शदीद, वो एक मजबूत किले में ही तो थे, मुराद है अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हिफाजत तो थी उनको, लेकिन उस वक्त जो उनकी हालत हो गई थी तो ये भूल गए कि अल्लाह की पनाह में तो मैं आ सकता हूँ, यानी उस वक्त उनको ये कहना चाहिए था कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ तुमसे, आउज़ु बिल्लाहु मिनकुम मिनश्शैतानिर्रजीम, तो ये वक्ती तौर पे उनके मुंह से बात निकली थी जिस पे अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया था, लेकिन मफहूम उनका यही था कि आज मेरा जोर नहीं तुम पर चल रहा, कोई भी नहीं है जिसका मैं सहारा लूं, हालांकि अल्लाह का सहारा वो ले सकते थे, लेकिन बाज दफा तकलीफ और गम में इंसान के साथ ऐसी हालत होती है। आयत 81, कालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिक लन यसिलू इलैक, फरिश्तों ने कहा लूत आप, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हम तक नहीं पहुंच सकेंगे, यानी फरिश्तों ने फिर तसल्ली दी, क्या आप क्यों फिक्र करते हैं कि हमें तकलीफ देंगे, ये नहीं दे सकते, हम इनके हाथ लगेंगे ही नहीं। फसरी भी आहली का विकेत मिनल, बस अब रात के इस बकिया हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाए। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और कोई भी आप में से पीछे मुड़कर ना देखे, क्यों पत्थर का बन जाएगा, हमारे कहानियों में तो यही होता था बचपन में, मुरादे के पीछे मुड़कर देखेगा तो उन पर रहम आने लगेगा, जब कौम पे हलाकत होगी, अजाब होगा, तो उनसे हमदर्दियां भी खत्म। बड़ा सख्त इम्तिहान है कि ना सिर्फ ये कि कौम ने तबाह होना है, बल्कि ये बता दूं कि उनकी तबाही को देखकर पीछे भी नहीं मुड़ के देखना। ये है अल्लाह का फैसला। गलत काम करने वालों पे जब अल्लाह की पकड़ आए तो उस पे तुम तरस भी ना खाओ। इन लम्रा तक, हाँ मगर तेरी बीवी, इन नहु मुसीबु हाँ मा साबहुम, उस पर भी वही मुसीबत आएगी जो इन सब पर आने वाली है। सवाल पैदा होता है कि इनकी बीवी का कसूर क्या था। सूरह तहरीम में भी हम पढ़ेंगे, दरब अल्लाहु मसलल लिल्लज़ीन कफर उमरात नूहन वमरात लूत, आयत 10 में आता है कि अल्लाह काफिरों के लिए मिसाल बयान करता है नूह की बीवी और लूत की बीवी की। ये दोनों हमारे चुने हुए बंदों के तहत थी, लेकिन इन्होंने अपने शौहरों से खयानत की। क्या खयानत थी? कहते हैं कि इनकी बीवियां, खासतौर पे अब इनकी जिस बीवी का जिक्र है, अपने शौहर के मिशन में शरीक नहीं थी। हजरत लूत की बीवी अपने घर के ऊपर कुछ झंडियां लगा देती थी, जैसे इन लड़कों की आमद की खबर बीवी ने दी थी खानदान को, हजरत लूत के खानदान से नहीं थी, क्योंकि ये तो इब्राहिम की नस्ल से थे, ये उधर से आए थे, गोया के कहले गैर खानदान की थी। और अपने खानदान की मोहब्बत और बिरादरी की चीज इससे दिल से ना निकली, तो इसने दूसरों को बुलाया था कि आ जाओ हमारे घर में, लड़के आए हुए हैं। ये थी खयानत। तो इस पे अल्लाह ताला ने इसको भी पकड़ लिया और फरमाया कि वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकी। इन्ना मौईदहुम अस्सुबह, इनके वादे का वक्त सुबह का है। अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? यानी फरिश्तों ने कहा कि आप फिक्र ना करें हमारी, आप यहाँ से निकल जाएं। ये आखिरी हुक्म होता है हिजरत का, जब नबी को आता है तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो चले जाएंगे और पीछे से अजाब आएगा, और साथ ही बता दिया कि आपकी बीवी पे भी पकड़ आ जाएगी। और फिर वही हुआ, आयत 82-83, फलम्मा जा अमरुना जालना आलियहा साफिलहा, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इसके ऊपर के हिस्से को नीचा कर दिया, यानी बस्तियों को तलपट कर दिया, इमारतें तबाह हुई, छतें जमीन पे आ गईं, दीवारें ऊपर आ गईं, सब हिल हल आ गया। वम तरना अलैहा हिजारतुम मिन सिज्जील मंदूद, और मजीद हमने इन पर बारिश बरसाई तह बतह कंकरियों की। अमतरना का लफ्ज मतर से पत्थरों की बारिश को कहते हैं, स्टोन रेन। और सिज्जील जो है ना, ये असल में फारसी लफ्ज है, संग और गिल। अरबी में संग सिज संज में बदल गया। संग कहते हैं पत्थर को, संगे मरमर कहते हैं ना, वही लफ्ज है। और गिल कहते हैं मट्टी को। तो मट्टी के पत्थर जो गीली मट्टी के धूप में गर्म होकर पुख्ता हो जाने के बाद बनते हैं, जैसे ईंटों को भट्टों में पकाया जाता है ना, वही सूरत है। तो इन बस्तियों पर अजाब दो सूरतों में आया था। जमीन के अंदर एक जोर का धमाका हुआ जिसके नतीजे में जलजला आया, ये बस्तियां उल्टी पलटी गईं और ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई, और इन्हीं पत्थरों के अंदर इनको दफन किया गया। और पत्थर भी कैसे थे? आयत 83, मुसव्वमतन, वो निशान जदा थे तुम्हारे रब की तरफ से, यानी हर आदमी का नाम उस पत्थर पे लिखा हुआ था जिस पे जो पत्थर डलना था पड़ा। कहते हैं सर के रास्ते से गया जिस समय, और प्राइवेट पार्ट के रास्ते से वो पत्थर बाहर आया, क्योंकि ये गंदा फेल सोच से शुरू होता है दिमाग की और शर्मगाह पे रुकता है, जैसा फेल वैसी सजा। ममा ही मिना जालिमीन अभी बईद, और ये इन जालिमों से कोई ज्यादा दूर नहीं। कौन? मुशरिकीन मक्का। कौम लूत की बस्तियां इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। कुरैश के काफिले जब फलस्तीन की तरफ जाते थे तो पहले कौम समूद और कौम मदियन के इलाके से गुजरते थे, फिर कौम लूत की बस्तियों के आसार भी इनके रास्ते में आते थे। तबुक के सफर में भी रास्ते में कुछ बस्तियों से गुजर बसर हुई। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन कौमों को पकड़ा, इनके काम कैसे थे, अल्लाह ने इनसे वही मामला किया। आज भी यही गुनाह है, पकड़ क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि आज ढील है। उस दौर में एक जुर्म पर कौमों को पकड़ लिया जाता था, क्योंकि अल्लाह ताला के फैसले थे कि जब कोई गलत काम करता है तो उसकी पकड़ उस पे लाजमी है। तो हम सब के लिए इसमें यही बात है जो आज शुरू में भी हमने बात की थी, कि आज के दौर के बहुत सारे फितनों में से एक फितना होमोसेक्सुअलिटी का, जिस हद तक अपने घरों का माहौल पाक साफ रख सके रखें। बेटे तो बेटे, बेटी बेटा, या बेटी बेटा बेटी, किसी को साथ ना सोने दें, कमरे में एक में साथ ना रहने दें, रातों को उठ के चक्कर लगाएं, बिस्तर अलग रखें, मजबूरी है अगर घर में बिस्तर यानी डबल बेड है तो बिस्तर की चादरें अलग रखें, सोने के ऊपर क्विल्ट अलग रखें, दो बहनों को भी साथ ना सोने दें, दो भाइयों को भी ना सोने दे। अल्लाह के नबी की साफ हदीस है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 साल का होने पर जब वो नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। नफ्स के जज्बे के ये दिन होते हैं, और खास तौर पे जब बाहर इतना गंद हो। कि मैंने आपको बताया कि बच्ची की बात सुन के मैं हैरान रह गई कि 9 साल की बच्ची और उसकी 5 साल की बहन की बातें नोट करके माँ बता रही है बेबी सिटर को कि ये मेरी बहन इस तरह की बातें सोचती है। कैन यू बिलीव? क्योंकि सारा जोश ही तो आज यही है ना इन्हीं को प्रमोट करने पे। तो याद रखिए, ये पत्थर के बच्चे नहीं है, ये इंसानों के बच्चे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी नस्लों को इन तमाम फितनों से बचा ले, और हम सबको इस दुनिया में रहते हुए इस दीन के इल्म को आम करने वाला बना दे, कि जिसके बाद लोग इस्लाम की इस छत के नीचे आ सके। यहाँ पे आज का सबक पूरा हुआ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.